నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కే
జయ.
హం కంటిన్యూ కరెంగే శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కే బారే మే. तो पिछले क्लास में हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील हरिदास ठाकुर प्रकट हुए थे और फिर बेनापोल नाम के स्थान में रहते थे, एकांत में तुलसी का सेवा करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते थे, और किस प्रकार से उस स्थान में रहते हुए वो इतने अधिक प्रभावशाली हुए, फेमस हुए कि उस गांव का जो मुखिया था रामचंद्र खान, हाँ, वो उनसे ईर्ष्या करने लगा और उसने कुछ ना कुछ दोष मैं हरिदास ठाकुर के अंदर ढूंढूं और उनको बदनाम करूं, इसलिए वेश्या को उन्होंने हरिदास ठाकुर के पतन करने के लिए भेजा. तो हमने सुना कि किस प्रकार से वो जो लक्ष्य हीरा वेश्या है वो जाती है हरिदास ठाकुर के पास और हरिदास ठाकुर को अप्रोच करती है कि मुझे आपका संग चाहिए. हाँ, तो हरिदास ठाकुर तो भगवान के नामों का उच्चारण करने में पूरी तरह से मग्न थे. तो ये जाती हैं, जो इसका वर्णन बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत में आता है, इस लीला का अंत लीला में, और प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिए हैं ये हर एक श्लोक के ऊपर. तो बहुत बड़ा चैप्टर है इस लीला को, श्रील प्रभुपाद विस्तार से समझाते हैं. तो जैसे ही वो लक्ष्य हीरा जाती हैं और उनको कहते हैं कि हे ठाकुर, आप तो परम सुंदर हो, हाँ, और आपका प्रथम यवन है, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो इतने सुंदर थे और भक्त थे, तो उनके चेहरे में स्वाभाविक रूप से तेज, हाँ, प्रकट हो गया था. और वो कहते कि ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो आपको देखकर अपने मन को रोक सकती है. हाँ, कहते कि मैं जब से आपको देखा हूं तब से मेरे मन को मैं रोक नहीं पा रही हूं, और आपके संग के लिए मेरा जो मन है हर समय लालायित होता है. हाँ, तोमा ना पाइले प्राण ना जाए धारण, यदि मैं आपको प्राप्त नहीं करूंगी, आपका संग में प्राप्त नहीं करूंगी, तो मेरे जीवन को मैं धारण नहीं कर सकती. तो इस प्रकार से ये जो वेश्या है, काम वासना के कारण और हरिदास ठाकुर को का पतन करने के लिए रामचंद्र खान के ऑर्डर से वो गई थी और हरिदास ठाकुर को उसने अप्रोच किया, तो हरिदास ठाकुर भी अपना हरिनाम ले रहे थे. तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हरिदास कहे तो मा करिमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति जावत नहाय अमार. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा, मैं आपको स्वीकार करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरा चैंटिंग पूरा नहीं हुआ है. जो संख्या पूर्वक नाम, जैसे गोस्वामी भी संख्या पूर्वक नाम लेते थे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नामों का उच्चारण करते थे, और चैतन्य महाप्रभु भी संख्या पूर्वक नाम जप करते थे. चैतन्य महाप्रभु तो इतने सावधान होते थे अपने जपा के विषय में, और चैतन्य महाप्रभु अपना चांटिंग तुलसी महारानी के सामने किया करते थे, बैठ के चांट करते थे और चलते भी थे, तो एक भक्त आगे तुलसी पकड़ के चलता था और महाप्रभु अपना जप कंटिन्यू करते थे. इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, उन्होंने भी अपने आचरण से सिखाया कि किस प्रकार से संख्या पूर्वक नाम लेना चाहिए. और जो सहजिया लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सहजिया मीन्स हर चीज को सहज ले लेना. तो वो कहते हैं नाम करने की आवश्यकता नहीं, नाम तो हमारे अंदर चलते ही रहता है. आप नए किसी व्यक्ति को प्रचार करोगे तो उसको बोलोगे आप हरि नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र लो, कहते ये तो हमारे अंदर स्वयं ही चलता रहता है, और कब तक चलता है वो पता नहीं, हाँ, लंबे समय तक चलता रहता है. तो ये सहज वृत्ति है, और हम जब उनको कहेंगे कि आप भगवद गीता ले लो, तो वो कहते हैं कि भगवान अंदर से कह रहे हैं कि अभी आवश्यकता नहीं है भगवद गीता की. हाँ, तो इस प्रकार से ये सब सहजिया प्रवृत्ति की जो मेंटेलिटी है, और सहजिया तो कृष्ण के जैसा रूप वेश धारण करते हैं और वो सोचते हैं कि हम कृष्ण के लीला में हैं, हम पहुंच गए हैं। ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, जप करना, मंगल आरती जाना, ये सब तो न्यू भक्तों का काम है। ये सब करना, जप करना, बैठ के भागवतम क्लास सुनना, ये हमारे लिए नहीं है। तो हरिदास ठाकुर भी नाम अपना संख्या पूर्वक करते थे और उन्होंने व्रत लिया था। उस वेश्या को कहते हैं कि मैंने एक महीने में 1 करोड़ नाम जप करने का मेरा व्रत है और मुझे इसलिए कंटिन्यू चैंटिंग करना पड़ता है। संख्या नाम समाप्ति जावत ना हया अमहर, कि कहते हैं कि जब तक मेरा ये संख्या पूर्वक नाम समाप्त नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी इच्छा को नहीं पूर्ति करना कर पाऊंगा, मुझे इस नाम को करने दो। तो जैसे पहले दिन वेश्या आए थे तो कृष्णदास कविराज करते हैं कि उसने पूरा प्रयास किया हरिदास ठाकुर को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपने हाव क्या कहेंगे उसको, भाव भंगिमाएं प्रदर्शित की। तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल अटेंटिवली चैंटिंग कर रहे थे, जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि भौतिक इच्छाएं भी हमें कई सारी भाव भंगिमाएं दिखाती हैं। कई भक्त होते हैं एक ऐसी मटेरियल डिजायर आती है कि पूरा चैंटिंग उसमें कलरफुल चैंटिंग होता है, फुल ऑफ वैरायटीज, और टेस्ट होता है उस चैंटिंग में, मतलब नाम के प्रति तो टेस्ट नहीं लेकिन जो मटेरियल थॉट्स है, मटेरियल डिजायर्स है, उनके बारे में प्लान बनाना, इसमें वो लगे रहते हैं। तो मैनेजर्स हैं या जिनके पास सेवा है उनको भी देखा जाता है कि पूरे जपा में वो मैनेज करते हैं पूरे दिन क्या करना है। तो लेकिन भक्त को मैनेज करना चाहिए कि कैसे मैं अपना हियरिंग एंड चैंटिंग करूं नाइसली। तो जो मैनेजर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनका सेवा क्या है कि जो भक्त गण है उनके लिए मैनेज करना कि ये लोग कैसे श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से कर सकते हैं, जॉयफुली होकर, आनंदित होकर। ऐसे नहीं कि उनको पकड़ पकड़ के बेड से उठा उठा के क्लास में बुलाना पड़े, ऐसे नहीं। तो ये कार्य है। तो हरिदास ठाकुर जब ये वेश्या आए तो तुरंत ही वो इनअटेंटिव नहीं हुए उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर। तो वैष्णवगण कहते हैं कि अटेंशन इज द सीड ऑफ लव। तो ये अटेंशन हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी चीज के प्रति आपका प्रेम है तो वो कहां से पता चलता है, कितने उस चीज के लिए आप अटेंटिव हो। तो कृष्ण प्रेम भी तभी हमें अनुकूल होगा और अनुभव होगा जब हम चैंटिंग के प्रति अटेंटिव होते हैं। तो ये अटेंटिव क्या है, हम यदि अटेंटिव होते हैं हरि नाम के प्रति तो ये दर्शाता है कि ये जो कृष्ण प्रेम मतलब आपके लिए अनुकूल है और अभी वो सीड है उसका। तो ये अटेंशन इज द सीड ऑफ लव। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे हृदय में अभी कृष्ण के लिए कोई प्रेम नहीं है, उनके बारे में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, उनके गुणों का कीर्तन करने के लिए, बोलने के लिए हमारे पास कोई आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज क्या करनी चाहिए, चाहे हमें जो भी सेवाज है या चैंटिंग है या जो भी एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटीज तो आध्यात्मिक है और इन सब एक्टिविटी का उद्देश्य है कि हम कृष्ण के प्रति जो सेवक की भावना है उसका विकास करें। तो जब हम अटेंटिव हो जाते हैं सब चीजों में तो ये जो कॉन्शियसनेस है वो जागृत हो जाती है, कृष्ण चेतना, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो विकास की पहला बीज है। इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपने सारे कार्यों में अटेंटिव रहें। जैसे हम मंगल आरती दर्शन मंगल आरती में खड़े हैं, ऐसे नहीं कि वहां खड़े हैं और किसी और चीज में मग्न है। तो वहां खड़े हैं हम मंगल आरती में तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम उस प्रेयर्स को जो चांट कर रहा है कृष्ण के लिए, एक वैष्णव लीड करता है कीर्तन और बाकी वैष्णव उसको फॉलो करते हैं, तो वो जो प्रेयर से वो जो स्तुति हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं कीर्तन, और हमें उस चीज के लिए सावधान होना चाहिए जो हम प्रेयर रिसाइट करते हैं, संसार दावा नललिलड लोका या वट एवर जो भी प्रेयर्स हैं, तो अटेंटिव होना चाहिए, उसके मीनिंग के साथ हम स्मरण करें। हाँ, तो सुबह उठते हमें इस बात की याद दिलाई जाती है कि ये जो जगत है ये कैसे है। हाँ, दावाग्नि है। हाँ, उठते ही सबसे पहले कष्टों का याद दिलाया जा रहा है कि ये जगत आपके लिए नहीं है, आप इस देश के प्राणी नहीं हो। तो ये आचार्यों ने, प्रभुपाद ने ऐसी योजना बनाई है, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं बहुत तीव्रता से कि ये जगत मेरे रहने के लिए नहीं क्रिएट किया गया है। इसलिए चाहे हम कीर्तन में हैं तो भी हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम गुरु या कृष्ण के प्रति ये प्रेम, हम जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो रिसाइट कर रहे हैं, या फिर जब हमारे कृष्ण मंत्र भी गाते हैं। तो कई बार हम ऐसे होता है कि फिजिकली हम वहां होते हैं लेकिन हमारा मन वगैरह किसी और जगह होता है, या भौतिक विचारों में होता है या ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, दोनों में से एक जगह होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि टेम्पल हॉल में हम दोनों चीजों से प्रेजेंट रहें, शरीर भी हो और वहां मन भी हो। तो ये अन्यथा प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए कहते बहु जन्मे करे जदे श्रवण कीर्तन तबूतना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो ऐसा श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, इस प्रकार से उछलते कूदते रहेंगे तो कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होगा और कोई कृष्ण के प्रति अनुराग हम विकसित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भक्त को इस बात के लिए कॉन्शियस रहना होगा, सावधान रहना होगा। जैसे हम कई बार करताल बजाते हैं तो ये दिखाना चाहते हैं कि कितना अच्छा बजा रहा हूं मैं। तो ये नहीं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु के वैष्णवों के लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता, सब लोग मुझे देखें। मृदंग बजाता हूं तो सब लोग मेरे लय ताल और स्टाइल को देखें और सब मेरी ओर आकर्षित हो जाए। तो ये जो भावना क्या है, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की भावना है। प्रभुपाद कहते थे एक बार एक ब्रह्मचारी वृंदावन में था और एक भक्त गा रहे थे कीर्तन, तो जैसे जो गान करने वाला भक्त है जैसे गा रहा है उसी के अनुसार ही कीर्तन होना चाहिए, मृदंग प्ले करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो गा रहा है उससे ज्यादा तेज इसकी आवाज होनी चाहिए, या बम्पर क्यों पीट रहे हैं हम बम्पर वो भी पता नहीं चलता हमें। तो जब ऐसे हो रहा था तो प्रभुपाद वहां थे कीर्तन के समय, तो प्रभुपाद ने कहा उसको बोलो ठीक से बजाओ, फॉलो द सिंगर, जो सिंगर गा रहा है उसको फॉलो करो मृदंग की जो बीट्स है। तो फिर से एक सन्यासी गए, उसको बताया प्रभुपाद ऐसे कह रहे, तो लेकिन 2-5 मिनट हो गए फिर से वैसे करने लगा। प्रभुपाद ने कहा जाओ उसको ठीक से समझाओ फिर से, प्रभुपाद का बड़ा ध्यान था। और फिर जब तीसरी बार ऐसे प्रभुपाद ने कहा उसके गले से मृदंग निकाल दो, तो वो सन्यासी गया और उसके गले से मृदंग निकाल दिया और वो बड़े मृदंग प्लेयर का भविष्य फ्यूचर खत्म हो गया। हाँ, इस प्रकार से क्या सीखते हैं कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, चाहे मृदंग भी बजाते हैं, तो हमें सावधान होना चाहिए कि ये कार्य तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, गुरु की प्रसन्नता के लिए। गुरु प्रभुपाद खड़े थे वहां फिर भी उसी प्रकार से वो गा रहे हैं। या फिर कई ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे आध्यात्मिक जीवन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने क्वालिटीज के द्वारा, या सोचो मृदंग प्लेइंग के द्वारा, या फिर सिंगिंग के द्वारा, या फिर लेक्चरिंग के द्वारा, या फिर कई ऐसी चीजों के लिए किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं हम, लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो भावना है ये बहुत ही खतरनाक है। तो हरिदास ठाकुर ने ऐसे नहीं कहे इम्प्रेस कर रहे थे जब करते हो, कई बार तो भावना ऐसी होती है हम जब प्रणाम करते, जब अकेले प्रणाम करते कोई नहीं है तो बड़ा स्मूथली, लेकिन बहुत सारे लोग खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, तो इतना अष्टांग दंडवत करते पूरा ध्यान पूर्वक, लेकिन ध्यान कृष्ण में नहीं होता, भौतिक लोगों के प्रति होता है। तो इसलिए हर एक जो चीज है जिससे ये इम्प्रेस करने की भावना हमारे हृदय में आती है, तो वो बहुत ही खतरनाक है। या जप करते समय भी हम, और कई बार ये भी घमंड आ जाता है कि मैं एक जगह बैठ के 16 राउंड करता हूं, नहीं। तो इस प्रकार से माया कई प्रकार से हमें अटैक करती है और यह हमें याद दिलाती है आप कितने महान हो, आप कितने शक्तिशाली हो, आप प्राउड। तो ये जो प्राउड है, हरिदास ठाकुर ने ऐसे नहीं किया। हरिदास ठाकुर हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे लेकिन उनके हृदय में क्या था, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए तो हरिदास ठाकुर सदा सदा कृष्ण का कीर्तन कर पा रहे थे इस गुण के कारण। तो जैसे ही ये वेश्या उनको अप्रोच कर रहे थे तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि संख्या नाम, मेरा संख्या पूर्वक नाम इसको मुझे होने दो और तब फिर मैं आपको अंगीकार करूंगा। तावत तुमेव शेषु न नाम संकीर्तन नाम समाप्ति है ले करे मुझे तो मार मान। तो उसने कहा कि जब ये हरि नाम जो मैं नाम कर रहा हूँ ये जब खत्म हो जाएगा मेरा संख्या पूर्वक, तो वैसे ही तुम्हें मैं अंगीकार कर लूंगा और जैसे तुम चाहती हो वैसे मैं करूंगा, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि बसी शुन नाम संकीर्तन, कहते कि तुम बैठो और क्या करो, नाम संकीर्तन को सुनो। तो ये इस प्रकार से जो वैष्णव है बहुत ज्यादा चलाक होते हैं, वो इतनी ट्रिक्स अपनाते हैं किसी जीव को उद्धार करने के लिए, प्यूरिफाइड करने के लिए। प्रभुपाद ने देखो कितनी ट्रिक्स अपनाए। प्रभुपाद जब प्रवचन दिया करते थे 26 सेकंड एवेन्यू में, जो नया पहला मंदिर न्यूयॉर्क में ओपन किया था, तो प्रभुपाद प्रवचन दिया करते थे और वो जानते थे इनकी कमी क्या है। ये जो हिप्पीज हैं जिनको हैप्पी बना दिया प्रभुपाद ने, तो जैसे ही लेक्चर देते थे तो प्रभुपाद खुद अपने हाथ से कुकिंग करते थे गुलाब जामुन रसगुल्ला और एक बड़ा सा जार भर के रखते थे दरवाजे के पास और फिर पहले बता देते थे जिसको जाना है सबसे पहले वो खाके चले जाए जितने चाहे। तो लेक्चर सुनते थे और जैसे अभी जाना चाहिए तो जाते थे, जैसे जार को देखते थे 2-3 गुलाब जामुन, आज भी फिस्ट में गुलाब जामुन थे, गुलाब जामुन डालते और फिर दरवाजे के पास जाते तो फिर जाने की इच्छा नहीं होती, गुलाब जामुन फिर से आके उनको बिठा देते थे और फिर से कृष्ण के बारे में सुनते थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन बुलेट है, कि एक बार ये शूट कर दो तो फिर व्यक्ति मर जाएगा, मतलब भौतिक रूप से मरेगा और वो छोड़ के नहीं जाएगा कृष्ण का श्रवणम। तो प्रभुपाद इस प्रकार की ट्रिक अपनाया करते थे और कितनी सारी ट्रिक्स खुद उनके लिए वंडरफुल प्रसाद बनाते थे और जितना चाहो उतना खाओ। प्रभुपाद कहते अखंड भोजन, मतलब कंठे भरे कंठ तक खाओ यहां तक, तो वो प्रभुपाद खुद सर्व करते थे, उनको डालते थे जबरदस्ती और वो जानते थे, कहते तुम यंग हो तुम ये हो टेक मोर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने इतनी ट्रिक्स अपनाए क्यों, केवल इस बद्ध जीवों को प्यूरिफाइड करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं सबसे बड़ा चालबाज हूं, मैंने ऐसी चाल चली है कि आप सबको मैंने कृष्ण के शेल्टर में लाया है, कृष्ण के शेल्टर में लाया है। तो इस प्रकार से सब जो लोग हैं प्रभुपाद के शरण में आकर शुद्ध हो जाते हैं। और प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं आया हूं आपको सेव करने और शेव करने। प्रभुपाद जब लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क में थे तो प्रभुपाद कहते लॉर्ड चैतन्य आए हैं आपको सेव करने। तो प्रभुपाद का जो सेव है ना SAVE, तो बंगाली एक्शन था, तो प्रभुपाद शेव मतलब शेव का वो आता था। तो भक्तों को समझ में नहीं आया कि लॉर्ड चैतन्य शेव करने आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा लॉर्ड चैतन्य या मैं आया हूं आपको शेव करने और सेव करने। तब भक्तों के समझ में आया कि अरे प्रभुपाद हमारा सेव करने आए हैं और हमें बचाने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से जो वैष्णव होता है वो किसी ना किसी प्रकार से इतनी ट्रिक्स अपनाता है ताकि जो बद्ध जीव है वो कृष्ण भावना को त्यागे ना। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ने भी ट्रिक अपनाई कि मुझे भी आनंद हो रहा है, आपकी इच्छा को पूर्ति करूंगा, आप जो कहोगी वही करूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बैठो यहां बैठो और केवल सुनो, मेरा माला तो खत्म होने दो। अभी देखो शुद्ध भक्त के द्वारा कोई व्यक्ति हरि नाम को सुनता है, हाँ, और इतना प्योरिफिकेशन, क्योंकि जैसे ये वैश्य आते थे तुलसी महारानी उन्होंने रखी थी, हाँ, हरिदास ठाकुर ने बनाकर तुलसी महारानी को प्रणाम करते थे, उसकी परिक्रमा करते थे, क्योंकि स्त्री है ना, हाँ, चाहे वो वैश्य ही क्यों ना हो, लेकिन जो इंडिया में जो आध्यात्मिक जो संस्कार है, हाँ, जैसे गांवों में आप जाएंगे तो वहां कोई ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, जहां हम यहाँ सीखते हैं वहां तो स्वाभाविक है, हाँ, माँ से छोटी जो बच्ची है वो सीखती है तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी को पानी डालना, तुलसी को कुंकू और वो हल राइस वगैरह ऑफर करते गांव में, तो इस प्रकार से स्वाभाविक है। तो ये वैश्य जो स्त्री थे, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि जो स्त्री है वो स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइंड होती है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में आप जाओगे, जब हम प्रोग्राम्स में जाते बाहर, चाहे पंडाल प्रोग्राम हो या हाउस प्रोग्राम्स हो, तो ज्यादातर माताएं होती है सुनने के लिए, और गांव में आप जाओगे तो बहुत सारी माताएं सुनने के लिए होगी और पुरुष नहीं होते, सिटी में भी ऐसे हैं। तो एक बार हमारे एक सन्यासी गए थे गुजरात के वहां लेक्चर देने, तो वहां 500 लोग आए थे लेकिन 499 माताजी थी ये रियल घटना है सूरत में, और एक ही पुरुष था जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, हाँ, तो वो अवाक हो गए कि मैं यहाँ, और उनके साथ 3-4 ब्रह्मचारी गए थे, तो ये क्या है, हाँ, तो इस प्रकार से ये स्वाभाविक रूप से है स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन। और चाणक्य पंडित कहा करते थे कि स्त्री को हमेशा एंगेज रखना चाहिए, किस चीज में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। तो हरिदास ठाकुर ने इतना अद्भुत ट्रिक अपनाया ताकि वो इसलिए रुके थे केवल इस वेश्या पर कृपा करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा तुम बैठो और मेरा चांटिंग खत्म होने की वेट करो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करूंगा और आप इसको सुनो, सुन नाम संकीर्तन। तो जैसे ही वो बैठी, क्योंकि वो तुलसी को प्रणाम करती थी, परिक्रमा करती थी, आके हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती थी और सुनती थी, तो इतना करने से कितना प्यूरिफिकेशन होता है, किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो जो तीव्रता है, स्पीड है प्यूरिफिकेशन का, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। प्रभुपाद का आप हरे कृष्ण मंत्र सुनते हो तो आप अनुभव कर पाओगे कि कैसे जो शुद्धि है वो महसूस होती है। प्रभुपाद गाते ना हरे कृष्णा, ऐसे जैसे प्रभुपाद हरे कृष्णा कहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो तीव्रता ले लेती है। तो इस प्रकार से ये वेश्या आती थी और 3 दिन तक, पहले दिन आई और देखा सुबह फिर से वो उठी, अरे अभी तक चांटिंग ही खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर चले जाती है, तो कहती शाम को आऊंगी वापस तो कहते ओके तो फिर वो जाके उसको कहती है कि नहीं अभी तो पहला ही दिन था, रामचंद्र खाना था, क्या रिजल्ट क्या है आज के, हाँ क्या रिजल्ट। तो उसने कहा नहीं नहीं आज तो पहला ही दिन था, अभी तो वो मान तो गया है, हरिदास ठाकुर मान गया है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा। तो ये दूसरे दिन जाती है और दूसरे दिन जाकर भी वही सिचुएशन होती है, नाम सुनती है, और तीसरे दिन आती है और फिर नाम सुनती है, और जैसे नाम सुन रहे थे हरिदास ठाकुर के मुख से, तो साथ साथ इसके मुख से भी नाम निकलने लगा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से ये वेश्या भी हरे नाम लेने लगी। कीर्तन करिते छे रात्रि शेष हैला, ठाकुरे रसने वेशार मन फिरी गेला, मन फिरी गेला कृष्णदास कविराज के शब्द है, मन फिरी गेला मीन्स मन अभी चेंज हो गया उसका, कैसे, केवल कीर्तन के संपर्क में वो आई, हरिदास ठाकुर जब चांटिंग कर रहे थे और उनके संपर्क में आने मात्र से वेश्या शुद्ध हो गई। तो ये संसार में कोई जो सेफ प्लेस है वो है नाम संकीर्तन। आप देखोगे आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं या फिर अकेले जब भी करते हैं तो कितने डिस्ट्रैक्शन आते हैं, मन भागता है, कई सारे विचार आते हैं। लेकिन जब आप नाम संकीर्तन हो रहा है जहां कई सारे भक्त जोर जोर से गा रहे, करताल मृदंग के साथ नाच रहे और वहां आप भाग लो, कोई भौतिक इच्छाएं आपको सताएगी नहीं। हाँ, जीव गोस्वामी कहते ये है नाम संकीर्तन का लाभ। कि संसार में कोई सेफ सुरक्षित स्थान है तो वो है भगवान का, जहां नाम संकीर्तन होता है। तो भक्त को वहां का आश्रय लेना चाहिए, वो जो इस जगत का सबसे सुरक्षित स्थान है। तो इस प्रकार से वो वेश्या शुद्ध हो गई, दंडवत है या पड़े ठाकुर चरणे। और फिर उसने जैसे अनुभव किया अपनी स्थिति को और उसने तुरंत हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। तो इस प्रकार से एक वेश्या भी जो इतनी पापमय कार्यों में लिप्त है और तो वो भी शुद्ध हो सकती है नाम संकीर्तन में, तो बाकी लोगों का क्या कहा जाए। तो यह है हरि नाम इतना शक्तिशाली है और जब हरि नाम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो शुद्धि हमारी हो जाती है। तो फिर जैसे इसने प्रणाम किया तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि अभी शुद्ध हो गए हैं, इसका हृदय परिवर्तन हो गया है। तो फिर वो वेश्या कहने लगी, वेश्या है या मुए पाप करी आछे अपार, कृपा करी करमो अधमे निस्तार। कहते कि मैं वेश्या हूँ और मैंने बहुत ज्यादा पापाचार किया है और आप मेरे ऊपर कृपा करिए और मैं बहुत अधिक अधम हूँ, आप मेरा निस्तार करिए। रोज हम गाते हैं ना, अधम जनार बंधो। वैष्णव क्या होते हैं, जो अधम है, जो नीच है, उनके भी वो बंधु है, फ्रेंड है, जो वैष्णव है, गुरु है। तो ये उनको प्रार्थना करती है, दंडवत प्रणाम करती है और पूछती है। तो इस एक लीला से हम कितनी सारी शिक्षाएं सीख सकते हैं कि हाउ टू अप्रोच गुरु, गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कौन व्यक्ति है क्वालिफाइड जो अप्रोच कर सकता है, जो ये जान जाता है कि ये भौतिक जगत बहुत अधिक कष्टमय स्थान है और मैं बहुत अधिक अदम हूँ, तो वो व्यक्ति अप्रोच करता है इस भौतिक कष्टमय सिचुएशन से निकलने के लिए। तो जैसे इसने हरिदास ठाकुर को अप्रोच किया और उसने कहा कि मुझे तो रामचंद्र खान ने भेजा था आपका पतन करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं जानता हूं इस बात को, मैं तो केवल यहां इसलिए रुका हूं क्योंकि जिस दिन तुम आने वाले थे उसके एक दिन पहले या उस दिन ही मेरा प्लान था, जाने का था, लेकिन मुझे पता चला आप आने वाली हो तो मैं रुका, केवल आपके उद्धार के लिए 3 दिन के लिए मैं रुका। हरिदास ठाकुर खुद कहने लगे और वो फिर उनको कहती है, वेश्या कहे कृपा करी करह उपदेश, की मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश। तो ऐसी ही जो रिक्वेस्ट है सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में की थी। सनातन गोस्वामी ने कहा, के आमे के नो आमाय जारे तापत्राय, कि मैं कौन हूँ, क्यों मुझे इस भौतिक जगत के कष्ट प्राप्त हो रहे हैं और मैं, सारे लोग मुझे पंडित कहते हैं लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से महाप्रभु को अप्रोच करते और कहते कि उपदेश करो। तो वेश्या भी एक प्रॉपर शिष्य का रोल अदा कर रही है और भगवत गीता में जो प्रोसेस बताई गुरु को अप्रोच करने में कि भगवान ने तद्विधि प्रणिपाते न परे प्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञान न तत्व दर्शन। तद्विधि क्या विधि है, प्रणिपाते न प्रणिपात, पूर्ण रूपे न निपात, पूरी तरह से शरणागत होके दंडवत करो, प्रणाम करो। तो वेश्या ने इसने भी प्रणाम किया, परि प्रश्न न सेवाया, बहुत विनम्र होकर उसने प्रश्न पूछा और कई प्रकार की सेवा भी वो करेगी फ्यूचर में। तो इस प्रकार से वो उसने कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए और मेरा क्या कर्तव्य है वो मुझे बताओ और ऐसी चीजें बताओ कि जगत के क्लेशों से अब मैं मुक्त हो जाऊं। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को वेश्या अप्रोच करती हैं और हरिदास ठाकुर उसको कहते हैं कि तुम अभी घर चले जाओ और जो भी तुमने अपने इस वेश्या के व्यवसाय से धन अर्जन किया है उस सबको ब्राह्मणों में बांटो। सब चीजों को बांट दो और केवल एक सामान्य वस्त्र धारण करके, सारी साड़ी धारण करके आप यहाँ आ जाना और इसी कुटिया में रहना। तो ये सब करके वो आती है और हरिदास ठाकुर उसको उपदेश देते हैं। तो हरिदास ठाकुर क्या उपदेश देते हैं? निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, आची रात पावे तवे कृष्ण रचरण। कि निरंतर कृष्ण का नाम लो और तुलसी की सेवा करो, ये दो चीजें करने से कृष्ण के चरण कमल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत शक्तिशाली चीजें हैं कृष्ण को कृष्ण के नजदीक जाने की। हाँ, क्योंकि तुलसी महारानी क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, हम रोज गाते हैं ना, क्या है प्रणाम मंत्र लाउडली, प्रियाय केशवश्च, केशव की क्या है? प्रिया है, प्रिय है, बहुत डियर है। और आगे कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, हे देवी, हे तुलसी महारानी, आप तो कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाली हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से तुलसी की किसी ना किसी प्रकार से हम सेवा करें और तुलसी का बहुत बड़ा स्थान है भगवत भक्ति में। कृष्ण अपने चरणों में हर समय तुलसी से अलंकृत रहते हैं और सुंदरता बढ़ती है। और कृष्ण किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते यदि हम तुलसी उसमें अर्पित नहीं करते और तुलसी की मालाओं को धारण करते हैं। कृष्ण के चरण कमलों से हमेशा तीन चीजों का सुगंध निकलता है, एक तुलसी का सुगंध आता है, एक कस्तूरी का सुगंध आता है और एक लोटस का सुगंध हर समय कृष्ण के चरणों से निकलता है। तो इस प्रकार से तुलसी की कोई सेवा करता है तो कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो कृष्ण की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि और हरि नाम उच्चारण करने के लिए भी तुलसी महारानी का बहुत बड़ा यह है, लाभ है। जब हम हरि नाम चांड करते हैं, चांड हम तुलसी माला पर ही करते हैं, हाँ तुलसी माला भी धारण करते, कितना तुलसी महारानी का यूज है भगवत भक्ति में। तो वो कृष्ण की बहुत अधिक प्रिय है और ये आज्ञा देकर हरिदास ठाकुर चले जाते हैं। ये आज्ञा देते, क्या आज्ञा देते हैं? कि निरंतर नाम लव तुलसी सेवन, निरंतर हरि नाम का उच्चारण करो और तुलसी की सेवा करो, जल्दी ही तुम्हें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। और हरिदास ठाकुर अपनी माला उसको दे देते, दीक्षा दे देते हैं उस वेश्या को और लक्ष्य हीरा नाम देते हैं। पहले हीरा नाम था शायद उसका और फिर लक्ष्य हीरा में जो 300,000 नाम वो भी जप करने लगती हैं लक्ष्य हीरा। तो यह है वैष्णव जब कृपा प्रदान करते हैं तो अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी क्वालिफाइड हो जाता है। इसलिए कहा गया है, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दुष्करम सुकरम भवेत, मतलब जो कठिन से कठिन कार्य है वो बहुत अधिक सुलभ हो जाता है। और महाप्रभु की कृपा नहीं है, उनके भक्तों की कृपा नहीं है तो सुकरम दुष्करम भवेत, बहुत सरल कार्य कठिन हो जाता है। आप देखो प्रभुपाद ने उनके शिष्यों की कृपा की, कोई ऐसे गृहस्थ भक्तों को भेजा, जाओ लंदन, दो जोड़ी गई थी लंदन पति पत्नी की, जाके उन्होंने पूरे लंदन को आप्लावित कर दिया कृष्ण भक्ति से। हमारे महाराज को अकेले कहा कि जाओ रशिया। तो एक दिन सुबह सुबह मायापुर में प्रभुपाद ने मंगल आरती के बाद दो सन्यासियों को बुलाया, एक थे तमाल कृष्ण महाराज और एक हिजोलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज। तो तमाल कृष्ण महाराज को कहा, तमाल तुम चाइना चले जाना, हरिभक्ति कितना कठिन है, ये तो न चाइनीज आता है ना, कितना ट्रबल। और महाराज को कहा रशिया। तो ये गए और क्योंकि प्रभुपाद ने इतना एम्पावर्ड कर दिया था, कृपा दी थी, कि वहां जाकर ये भक्त सफल हो गए। और उस समय तो हमारे एज के थे सब, कोई 25 का था, 25 कोई 21 का था, जयपता का महाराज 21 साल के थे तब संन्यास दिया प्रभुपाद ने उनको। 21 साल में सोचो कितना कम आयु है, तो ऐसे ऐसे और इन लोगों ने कितना बड़ा बड़ा कार्य किया है। तो ये हरिदास ठाकुर की कृपा से ये भी 3 लाखों नाम का जप करने लगी और हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़ के चले गए। माथा मुंडी एक वस्त्रे रहिल से ही घरे, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम ग्रहण करे। माथा मुंडी शेविंग कर लिया था उसने, मुझे क्लियर नहीं है, नामामृत जो बुक है उसके ऊपर शायद उसका फोटो है कि हरिदास ठाकुर का है, दोनों में से किसका है। आप देखा है कवर नामामृत बुक का? ठीक है, बाद में देख लेते, तब चेक करिए कौन है, मुझे याद पक्का नहीं, सर्च करना होगा। तो उस वेश्या ने अपना, हरे कृष्णा, अपना जो सर है वो मुंडित कर दिया था और रोज 3 लाख नामों का उच्चारण कर रहे थे। और ऐसी वो महान वैष्णव बन गई। और इतना ही नहीं कि कई सारे लोग उसके दर्शन के लिए आया करते थे। अब देखो कि मतलब कोई व्यक्ति कृष्ण के नामों का आश्रय ग्रहण करता है और वैष्णव या गुरु के आज्ञाओं का पालन करता है तो पूरी तरह से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और कृष्ण प्रेम उसके लिए अनुकूल हो जाता है। तो इस लीला से और वो बहुत अधिक फेमस हो गई और उसको कोई खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी, किसी चीज की नहीं। लोग मिलने आते थे और यह इतनी महान वैष्णवी बन गई थी कि लोग उनको प्रसाद भेजते थे, सब कुछ। तो इस प्रकार से ये जो लक्ष्य, ये जो हीरा है, लक्ष्य हीरा है, जो वेश्या अभी लक्ष्य हीरा नाम से जाने जा रहे थे सब जगह। और फिर ये जो रामचंद्र खान है जिसने ये अपराध किया था हरिदास ठाकुर के प्रति, और उसी रामचंद्र खान में जब हरिदास ठाकुर चले गए तो नित्यानंद प्रभु उस गांव में आए अपने कई सारे भक्तों के साथ। तो नित्यानंद प्रभु को जगह नहीं दिया उसने रहने के लिए देवी मंडप में, कहा कि आप गौशाला में जाके रहो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये जो स्थान है ये तो गोमांस और वध करने वालों के लिए है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने वो स्थान छोड़ के चले गए और कुछ ही दिनों में उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि कई मुस्लिम काजी वगैरह जो आए, क्योंकि ये उनका टैक्स अदा नहीं करता था, आके सारा धन उनका लूट लिया, उनके परिवार के साथ उनको बांध दिया, पूरे गांव को टॉर्चर किया और जिस स्थान में रहते थे वहां गाय को काट के उस स्थान में उसके मांस को पकाया। इस प्रकार से ये अपराध का फल, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इन्होंने जो अपराध किया था उसका जो ये फल है हरिदास ठाकुर के प्रति और लॉर्ड नित्यानंद के प्रति, उसका ये फल रामचंद्र खान को भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का ये जो जीवन है बहुत ही उत्साहित करने वाला है और हरि नाम के प्रति क्या कहेंगे और अधिक शक्ति या श्रद्धा, फेथ देने वाला है। तो इस प्रकार से ये लीला से हम कई प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं और जब हम डिस्कस करते हैं तो और भी कई और अधिक शिक्षाएं हमें मिलती हैं। तो ये जो आचरण है वैष्णवों का तो ये कोई सामान्य नहीं है, इनके आचरण से उन्होंने करके दिखाया और साथ साथ पूरे विश्व को भी ये शिक्षा प्रदान की। तो इससे हम ये भी सीखते हैं कि यदि हम अपने हरि नाम के प्रति बहुत अधिक गंभीर रहेंगे तो जो योग माया है और जो अपोजिट सेक्स का जो आकर्षण है वह हमारे हृदय में नहीं रहेगा, वह हमसे मुक्त हो जाएगा। क्योंकि सारे संसार का जो बंधन है वो यह है, इस संसार को प्रभुपाद कहते थे मैथुन आगार, जो हरेक को बांध के रखा है इस चैन से। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को यह अप्रोच करने आए थे वेश्या, लेकिन हरिदास ठाकुर अपने चांटिंग के प्रति बहुत अधिक सतर्क और गंभीर रहे तो उन्होंने ये दिखा दिया कि उसी को क्या कर दिया उन्होंने, एक शुद्ध भक्त के रूप में परिवर्तित किया। तो श्रीला हरिदास ठाकुर की, श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौरव प्रेमानंदे। तो आगे हम और सुनेंगे कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर आगे उनके कई और अलग अलग पास टाइम से लीलाएं हैं, तो आगे के क्लासों में हम सुनेंगे। ठीक, हरे कृष्ण। तो मैं चलता हूँ।